نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى آل عمران آيات نمبر 45 سے 58 تک. اللہ تعالیٰ ہمارا سیکھنا قبول فرمائے. پچھلا لیسن ہم نے دیکھا تھا، بہت ہی خوبصورت لیسن، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ سے ذکر شروع کیا کہ کیسے انہوں نے منت مانی تھی، اور پھر منت تو سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا تو اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی، مگر وہ بیٹی ہوئی تو اب حیران ہے، پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا. دعائیں کی ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھ سے قبول کر لینا، نظر مان کے بھی دعا کی ہوئی تھی، جو میں نے نظر مانی ہے تو مجھ سے قبول کر لینا. اور اب بیٹی ہوئی ہے تو اس کا نام پہلے مریم رکھا، اور میں نے آپ کو اس نام کا مطلب بھی بتایا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے، اور کیسے پیدا ہوتے ہی بیٹی کو بھی اور اس کی آگے نسلوں تک کو اللہ کی پناہ میں دے دیا شیطان سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی نظر کو قبول فرمایا، ایسی بچی کو قبول فرمایا. اللہ نے خود اس کو نشو نما دی، زکریہ علیہ السلام جو خود پیغمبر تھے ان کی کفالت میں دے دیا. اور پھر زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کو ایسے غیر معمولی رزق مل رہا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اور لیکن اولاد کیسی؟ طیب، پاکیزہ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اولاد دی جس کا نام بھی اللہ نے رکھا، اور اس کے ساتھ اتنی ساری خوشخبریاں دی کہ وہ سردار بھی ہوں گے، وہ پاک باز بھی ہوں گے، وہ نبی بھی ہوں گے، وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. تو اب ہم آج دیکھتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کوئی چنا جاتا ہے کسی خاص کام کے لیے ہی نا، آپ کو پاک کر دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پہ چنا. اور پھر ان سے کیا مطالبہ کیا گیا کہ اب چنے جانے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ انسان اب بس اس کی خوشیاں ہی مناتا رہے کہ میں تو چنی گئی ہوں، بلکہ چنے جانے کے بعد انسان سے اس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں. آج ہم حضرت مریم کی آگے کہانی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چنا تھا نا، تو کسی ظاہر ہے بڑے کام کے لیے ہی چنا تھا. اور وہ بڑا کام کیا تھا کہ اب اذ قالت الملائکہ، تو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، یعنی فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، فرشتے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے کوئی فرشتے آ گئے، بلکہ یہ اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف کہ وہ حضرت مریم کے پاس آئے ہیں اور ان کو انہوں نے آ کے خوشخبری دی ہے. اور یہ خوشخبری کس چیز کی تھی؟ یہ خوشخبری تھی، یا مریم ان اللہ یبشرکی، اے مریم اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ بکلمت منہ، ایک کلمہ کی اپنی طرف سے. کلمہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو پیدا ہو گئے، ادروائز آپ دیکھیں کہ ظاہری اسباب میں سے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی باپ کی طرف سے جو حصہ تھا وہ تو ہے ہی نہیں. تو ایک کماری لڑکی کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے ایک کلمے کی، یہ بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ بشارت ہے، आप देखें कि आपने पहले भी जकरिया अलैहि सलाम के जिक्र में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी यहया की, अब भी आप पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने बशारत दी है कलमे की। इससे हमें क्या मालूम होता है कि औलाद जो है ना वो खुशखबरी है, औलाद का आना खुशी की बात है। इसके ऊपर बाज लोग बहुत आज के वक्त में खास तौर पे बहुत नाक मुंह चढ़ाते हैं। अगर लड़की की शादी हो जाए और वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए तो तब भी बहुत बातें बनाई जाती हैं, क्या जरूरत थी अभी इतनी जल्दी, क्या थी पड़ी हुई, और इस तरह की बातें। अभी तो एंजॉय करने के दिन थे, और अगर 2-3 बच्चों के बाद फिर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर इसके ऊपर भी बहुत ही अफसुर्दगी दिखाई जाती है कि क्यों हो गया अब, और दोबारा हमें तो नहीं चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने औलाद को खुशखबरी फरमाया। चाहे देखें हजरत मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो क्या सोचेंगी कि ये खुशखबरी है मेरे लिए, ये तो मेरे ऊपर। आप सोचें कि अल्लाह ताला माफ करे कि जो लोग जिना करते हैं, जो औरतें जिना में मुलव्विस होती हैं, वो भी कहती हैं कि ये काम तो कर लिया लेकिन प्रेग्नेंट ना हो हम। और कहां एक पाक दामन लड़की, एक वो लड़की जो इतनी इबादत गुजार है और नेक है, उसका प्रेग्नेंट होना, आप सोचें कि वो कितनी बड़ी एक बात बन जानी थी मुआशरे में ये लड़की। क्योंकि आज तक इंसानियत में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि बगैर किसी ताल्लुक के कोई आमिला हो जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं इसने कोई बुरा काम किया होगा, यही सोचेंगे ना लोग, क्योंकि इसकी पहले से कोई रिवायत है ही नहीं। इसके बावजूद अल्लाह ताला इस चीज को खुशखबरी फरमा रहे हैं कि ये खुशखबरी है। और कहां ये कि आज सब कुछ ठीक ठाक होते हुए हमें खुशखबरी नहीं लगती ये चीज, और बाज औरतें अबॉर्ट तक करा देती हैं, या अब हमें तो नहीं चाहिए, या अब लोग क्या बातें करेंगे। आप सोचें हजरत मरियम के वहां पे कितनी बातों की गुंजाइश थी, फिर भी अल्लाह ताला ने बशारत के तौर पे इसको मेंशन किया। तो कभी भी औलाद को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई एक मुश्किल आ गई, ये एक मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, हाय क्यों हो रही औलाद। उनसे जाके पूछें जो औलाद को तरसते हैं, और इस नेमत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कभी। तो अल्लाह ताला ने इसको बशारत फरमाया, और ये हर एक के लिए एक बशारत ही है कि अल्लाह ताला उसको एक बहुत बड़ी नेमत से नवाज रहा है। तो अल्लाह ताला खुशखबरी देता है आपको ये कलमे की अपनी तरफ से, और इसका नाम है अल्लाह ताला ने ही इनका भी नाम खुद रखा है, नाम क्या लकब भी खुद रखा है, इस मुगल मसीह हो मसीह इनका लकब है, नाम नहीं है, नाम तो आगे आ रहा है। जैसे लकब होता है ना किसी का, टाइटल, टाइटल होना किसी का, मसलन है कि किसी को टाइटल दिया जाता है शेख का, किसी को आलिम का, किसी को कोई और इस तरह के टाइटल मिलते हैं इमाम का, तो उनका टाइटल क्या था, मसीह। मसीह किससे है, मसहा से, मसहा मसहा मसह हम करते हैं ना वजू में भी मसह करते हैं, तो क्या होता है मसह करते वक्त हम क्या करते हैं, हम सर पे हाथ फेरते हैं, और हम पैरों के ऊपर अगर जुराबें पहनी हुई हैं तो उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, ठीक है। तो मसह का मतलब होता है फेरना। ईसा अलैह सलाम क्या करेंगे, वो फेरेंगे अपने हाथ को, जिससे वो मुजजाना तौर पे आगे आएगा, अंधे को ठीक करेंगे अल्लाह के इज़न से, कोढ़ी को ठीक कर देंगे अल्लाह के इज़न से, ठीक है। तो एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब है इसका बहुत ज्यादा सियाहत करने वाला, मसीह का मतलब बहुत सियाहत करने वाला, बहुत ज्यादा सफर करने वाला, तो ये बहुत घूमेंगे बहुत सफर करेंगे और दीन का पैगाम अल्लाह का पहुंचाएंगे। और मसाक का मतलब होता है मुबारक भी, तो ये इनको अल्लाह ताला ने लकब अता फरमाया। किसी और का भी नाम आपने मसीह सुना है, कहीं कहीं और जहन में आता है, मसीह कहीं और किसी का नाम। हाँ जी, मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल कौन है? मसीह दज्जाल का नाम भी मसीह क्यों है? वो भी बड़े हाथों की सफाई से बड़े बड़े काम करेगा, और वो भी बड़ी सियाहत करेगा, वो भी बड़ा सफर करेगा, सफर करके अपने फितने फैलाएगा। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि वो इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम से लेकर जितने पैगंबर आए, कयामत तक जितने लोग आए, फितना दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। सब ने अपने लोगों को, अपनी कौमों को, सब पैगंबरों ने इस फितने से आगाह किया लोगों को। आप सरसरम फरमाते हैं, इसको मुस्लिम ने रिवायत किया, आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह की मखलूक में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। क्या मतलब फितने का? यानी बहुत बड़ा टेस्ट लोगों के लिए, इतना मुश्किल टेस्ट है ये, इतना मुश्किल टेस्ट है कि कोई कोई ही इससे बच सकेगा, कोई कोई। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैं रो रही थी। आपने पूछा क्यों रो रही हो? फरमाती हैं कि या रसूल, मुझे दज्जाल याद आ गया। इस वजह से रो रही, यानी इंसान फिक्रमंद होता है ना। सोचिए हम, हमें तो मैं सोच रही थी, हमें तो कभी नहीं दज्जाल याद आएगा, तो हम रोने लगे कि हाय हमारा क्या बनेगा, या हमारी नस्लों का क्या बनेगा, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में आ गया तो सब की तरफ से मैं उसके लिए काफी हूंगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद निकला तो याद रखना, यानी उसकी निशानी बताई, तुम्हारा रब काना नहीं है, यानी वो काना होगा, उसकी एक आंख होगी। तो ये भी मतलब है मसीह से कि यानी वो फेरने वाला, यानी उसकी एक आंख पे जैसे किसी ने हाथ फेर दिया हो ना, एक आंख है ही नहीं, दूसरी है बस। लेकिन ये मतलब नहीं है जो आज आपको जगहों पे तस्वीरें लगाई होती हैं कि माथे पे एक आंख बनी हुई है, ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल कोई अलग ही कोई मखलूक के माथे पे एक आंख बनी हो, ऐसे नहीं। एक आंख होगी और एक आंख नहीं होगी, यानी उसके ऊपर जैसे किसी ने कुछ फेर दिया, मिटा दी गई। तो ये ऐसा फितना है कि जब ये आ जाएगा ना, उसके बाद अगर कोई ईमान भी लाएगा तो उसका ईमान उसको फायदा नहीं देगा, और जो पहले से ईमान नहीं लाया या हालत ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया तो उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि ये इतना बड़ा फितना है कि इसके सामने ना आना, कोई ये समझ के इसके सामने ना आए कि नहीं जी मेरा तो ईमान बड़ा मजबूत है, नहीं मुझे नहीं कुछ होगा। नहीं, जो इसके सामने आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है, लेकिन ना वो उसका ईमान चला जाएगा, वो इसके पीछे लग जाएगा। तो इसकी वजह से जो मोमिन होंगे वो तो पहाड़ों में जाके छुप जाएंगे। इसीलिए हमें कहा गया ना सूरह कहफ पढ़ने का जुमे के दिन, कोई जाहिर है, कोई वजह ही है कि हमें कहा गया। ये क्यों हमें रिमाइंड कराया जाता है कि अगर आप उस वक्त में हुए तो हो सकता है आपको भी पहाड़ों में जाके छुपना पड़े। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दज्जाल तब निकलेगा जिस वक्त लोग इसके बारे में बात करना छोड़ देंगे। इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये नहीं हम कह सकते कि हम अभी तो दज्जाल नहीं है ना, अभी तो कुछ नहीं है, तो हम क्यों इसके बारे में बात करें? नहीं, इसके बारे में बात करना जरूरी है, इसके बारे में अपने बच्चों को बताना जरूरी है, अगली नस्लों को बताना जरूरी है, और उनको ये कहना जरूरी है कि वो आगे अपनी नस्लों को बताएं। तो ये तब निकलेगा जब ये, और ये ऐसा नहीं किसी के घर में पैदा होगा। हम ये सोचते हैं हाँ फलां लोग इतने, यानी दीन को समझ नहीं है ना, तस्वीरें भेज देते हैं, देखो फलाने के घर में एक बच्चा पैदा हो गया, उसकी एक आंख है। अब पता नहीं किस किस तरह की फोटोशॉप करके और क्या क्या बना के रख देते हैं। उसने पैदा नहीं होना, वो ऑलरेडी मौजूद है कहीं, उसने खुरूज करना है बस, वो निकलेगा बस, और उसके निकलने का सबब उसका गुस्सा होगा जो उसको गजबनाक कर देगा। बस अल्लाह ताला ने जिस वक्त निकालना होगा उस वक्त कोई ऐसा वाकया होगा दुनिया के अंदर, मुस्लिम में ये रिवायत है कि वो बहुत गुस्से में निकलेगा, कोई चीज उसको गजबनाक बनाएगी तो वो निकलेगा। आपको शायद अगर तमीमतदारी की वो रिवायत याद हो कि जो उन्होंने एक आइलैंड के ऊपर देखा था इसको, दज्जाल को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया था, वो जकड़ा हुआ था वहां पे, उसने कहा था मैं दज्जाल हूँ, तो वो ऑलरेडी है और वो कहीं है। अब आप ये सोचेंगे हाँ तो फिर किसी को पता क्यों नहीं आज तक चला कि कहाँ पे है। तो बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हैं जो कि इंसानों को नहीं पता है, और इसकी मिसालें आपको बहुत अच्छी तरह आपके सामने पता चलती हैं। इंसान तो छोटी चीज है, जहाज के जहाज गिर जाते हैं और पता ही नहीं है कि कहाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा, मैं तवाफ कर रहा हूँ, अचानक मैंने एक आदमी को देखा, गंदम गू सुफे सॉरी सीधे बालों वाला, उसके बालों से पानी टपक रहा था जैसे अभी अभी गुसल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है, मुझे बताया गया कि ये ईसा बिन मरियम है। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया, जिसके सर के बाल घुंघरियाले थे और आंख कानी थी, जिस तरह फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने जवाब दिया ये दज्जाल है। अच्छा ये बात नहीं है कि इंसान को पता नहीं चलेगा कि ये दज्जाल है, तो पता चल जाएगा, हर मोमिन पहचान लेगा, लेकिन इंसान वो जिसको कहते हैं ना हम मजबूर हो गए, हम क्या करते, हम क्या करते, हम मजबूरी थी हमारी, ये इंसान मजबूरियों को लेकर और उसके पीछे चल पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी बात हो गई दज्जाल की भी, इसमें तो अल मसीह ईसा अलैहि सलाम का भी लकब है और दज्जाल का भी है। इससे इसके फितने से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, मसनून दुआओं में आप देख सकते हैं, और ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे नमाज में सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, उनको तो क्या जरूरत थी ये दुआ करने की, उनको कौन सा खतरा था इससे, लेकिन उन्होंने अगर हमें सिखाई तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कितना हमें मांगना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इसके फितने से अपनी पनाह मिले। आप देखें अगर दुनिया में ऐसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि एंड एंड ऑफ टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है, और इससे हमें सबको अवेयर होना चाहिए, हमें सबको समझना चाहिए कि हम दुनिया के आखिरी वक्त में है, दुनिया के खत्म होने के आखिरी वक्त में, अब वो चाहे 100 साल हो, 200 साल हो, 300 साल हो, लेकिन ये एंड ऑफ टाइम शुरू हो चुका है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं कहते, ये सब कह रहे हैं जो इल्हामी मजाहिब वाले हैं, ईसाई भी कह रहे हैं, यहूदी भी कह रहे हैं और मुसलमान भी कह रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर हम बिल्कुल इन चीजों को छोड़ देते हैं और हमें समझ ही नहीं है इनकी, हमें पता ही नहीं है, तो हम तो लग जाएंगे ना पीछे। कोई कोई बच सकेगा जिसका ईमान बहुत मजबूत होगा, वरना ज्यादा लोग क्या कहेंगे, हम तो सूद जैसी चीज के आगे हार गए और हमने कहा अब क्या करें, मजबूरी है, हारे के नहीं हारे, क्या करें, मजबूरी है, दुनिया तो इसी पे चल रही है, तो मसीह दज्जाल आएगा तो क्या होगा, मजबूरी है, क्या करें, किधर जाएंगे, हम तो नहीं जाके पहाड़ों में कहीं रह सकते, हम तो नहीं वीरानों में जाके छुप सकते, हम तो लग्जरीज के आदी हैं, हम तो एसी ना चले तो रह नहीं सकते, हमें चाय ना मिले तो सर में दर्द हो जाए, हम तो गाड़ियों के और आरामदेह बिस्तरों के आदी हैं, हम रहेंगे जाके, तो ऐसे ही नहीं इसको इतना बड़ा फितना कहा गया, ये ना समझे कि मामूली बात है, वो ही ईमान अपना बचा सकेगा जिसका ईमान इतना मजबूत होगा कि कोई आग में डाल दे तो डल जाऊंगी लेकिन मैं इस पे ईमान नहीं लाऊंगी। और ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई वजह ही होगी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम अलैहि सलाम से लेके कयामत तक नहीं कोई इतना बड़ा फितना होगा। हम छोटे छोटे फितनों को ही सोच के कहते हैं हाय कितने फितने आजकल, हम तो उनके सामने हार माने हुए हैं, हमें ये फितने बड़े लगते हैं, और वो क्या फितना होगा फिर, जब इंसान की रोजी रोटी को कोई अपने कब्जे में ले ले, वो क्या होगा? और अल्लाह के इज्म से अल्लाह ने उसको फितना बनाया। तो ये बात करनी जरूरी थी, थोड़ी सी इससे हटके है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि सब इन चीज़ों के बारे में ज़रूर अपने इल्म लें, आपको समझ होनी चाहिए। तो उनका नाम मसीह ईसा बिन मरियम, ईसा हिब्रू का लफ्ज़ है, ईशु उससे अरबी में ईसा बना, मतलब सैयद, सरदार, पॉलिटिकल लीडर, कायद। तो ईसा इब्ने मरियम, मरियम के बेटे, मरियम के बेटे क्यों कहा? बाकी तो किसी पैगंबर के बारे में पुराने पाक में ये नहीं आया कि यूसुफ बिन याकूब, ये नहीं आया याकूब बिन इसहाक, तो इनका क्यों आया? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये बताना था कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ मरियम के बेटे हैं, इनका बाप कोई नहीं, वरना हमेशा बाप का नाम आता है ना, यहाँ पे बाप है ही नहीं, तो मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आया। और वजीहन, तो यहाँ पे तो सबकी रद्द हो गया ना, ईसाइयों का भी और यहूदियों का भी, जो कहते हैं वो वलदु जिना थे नाउजुबिल्ला, उनका भी रद्द हो गया कि इनका बाप कोई नहीं है, किसी के बेटे नहीं है ये आदमी के। और ये भी रद्द हो गया कि जो लोग कहते हैं कि ये नाउजुबिल्ला खुदा का बेटा है, नहीं वो इब्ने मरियम है बस। वजीहन, वजाहत से, इज्जत वाला, बुलंदी वाला, वजी होगा, फिर दुनिया, दुनिया में भी और आखरत में भी, यानी इतना इज्जत वाला होगा। आज भी देखें आप, अंदाजा कीजिए कि इतनी उनकी मुखालफत हुई थी, कि यहूदियों ने इतनी मुखालफत की थी कि सूली पे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आज तक भी इनके नाम लेवा दुनिया में कितने मुसलमान भी और ईसाई भी हैं जो इनको मानते हैं। तो वो चेहरा जो इज्जत वाला चेहरा, वज चेहरे को कहते हैं ना, तकरीम वाला, तो वो कोई आम आदमी नहीं थे, बड़ी ऑनरेबल चेहरा था उनका। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर कोई एक स्टैंड आउट करता है ना, अपनी सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी की वजह से नहीं, बस उसके में इतनी अट्रैक्शन होती है। तो उनको अल्लाह ताला ने ऑनर दिया है उनके नबुवत की वजह से भी, लोगों से बात की उन्होंने, जिस वक्त अभी पैदा हुई है, अभी आएगी बात, तो उनको अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। अब देखें एक ऐसे बच्चे को जो बिन बाप के पैदा हो रहा है, और लोग उसको अल्लाह ताला माफ करे वलदु जिना कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ने उनको वजीह बनाया। यानी हजरत मरियम को उस वक्त खुशखबरी दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें, वो वजीह होगा दुनिया में भी और आखरत में भी, आखरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मकाम पाएंगे, आला दर्जे होंगे उनके, इज्जतें होंगी उनकी। सुभान अल्लाह, तो दुनिया के कहने से नहीं कुछ होता, ये अल्लाह है जो इज्जतें देने वाला। हमने क्या पढ़ा था, अल्लाह ताला मालिकल मुल्क है ना, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क है, अल्लाह बादशाह है, बादशाहत उसके कब्जे में है। तो अइज्जु मन तशाउ तुदिल्लु मन तशाउ पढ़ा है ना, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो लोगों ने चाहा कि उनको ये कह के बदनाम किया जाए, और उनको ये कह के सूली पे चढ़ाया जाए, उनके ऊपर अभी हम बात करेंगे कितने सारे इल्जामात लगाए गए, लेकिन अल्लाह ने उनको वजी बनाया। आज इज्जत करते हैं सब उनकी। वह मिनल मुकर्रबीन, और मुकर्रब बंदों में से, मुकर्रब कौन होता है? जिसको अल्लाह करीब कर ले, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उसको करीब कर ले, लेकिन कोई ऐसा है जिसको अल्लाह खुशखबरी पहले से दे देता है कि अल्लाह ने उनको करीब कर लिया, पर रब बंदों में शामिल कर लिया, दुनिया में भी और आखरत में भी। दुनिया में करीब अल्लाह ताला का कुर्ब उनको नसीब हुआ, नबी थे, और आखरत में भी अल्लाह अपने से करीब करे। अच्छा, हमारी भी ख्वाहिश होती है, अब हम ये देखें नबुवत के दर्जात और ये दर्जात, तो ये तो चुने हुए लोग अल्लाह के होते हैं, वो तो नहीं बन सकते, लेकिन मुकर्रबीन आम लोग भी बन सकते हैं। कैसे बने मुकर्रब, क्या आपका दिल चाहता है अल्लाह से करीब हो? याद रखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आखरत में अल्लाह का कुर्ब मिले, तो दुनिया में अल्लाह से करीब होना पड़ेगा। और आखरत में अल्लाह के करीब जगह कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस सबसे ज्यादा करीब है, जिसकी छत ही अल्लाह का अर्श है। और मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला ने उसको अपने हाथों से बनाया, सजाया। तो जो चाहते हैं जन्नतुल फिरदौस पाना, अल्लाह का कुर्ब पाना, उनके लिए फिर क्या जरूरी है? दुनिया में अल्लाह के करीब हो, अल्लाह से दूर नहीं भागना, अल्लाह से करीब होना। अल्लाह से दूर भागेंगे इस दुनिया में तो आखिरत में क्या अल्लाह के करीब हो जाएंगे? नहीं, जैसे आप दुनिया में होंगे वैसे ही मकामात आखिरत में पाएंगे। तो दुनिया में अल्लाह से करीब होने का क्या तरीका है? पहला तरीका जो बुखारी में आता है, वो तरीका ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी में दुश्मनी करे, मैं उसे लड़ाई का ऐलान सुनाता हूँ। और अब ये सुनने की बात है, मेरी पसंदीदा चीजों में से किसी भी चीज के जरिए मेरा बंदा मुझसे इस कदर करीब नहीं होता जिस कदर उन चीजों को अदा करने से करीब होता है जो मैंने फर्ज की हुई है। यानी आप जितनी चीजें निकाल लें, मैं आपको कोई बताती जो आप ये कर लें, वो कर लें, सदका कर लें, फलां कर लें, फलां कर लें, नहीं। हदीस में क्या आता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से करीब करने की चीज फराइज अदा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फर्जों की तरफ तवज्जो दें, चाहे वो नमाज है, चाहे वो जकात है, चाहे वो रोजे हैं, चाहे वो और जो भी फराइज अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रखे हैं। और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यानी फर्ज के बाद क्या दर्जा आता है? नवाफिल का। और हमारे पर फराइज आयद होते हैं बीवी के तौर पे, माँ के तौर पे, बेटी के तौर पे, हमारे पर फराइज हैं जो अल्लाह ने आयद किए हैं, वो भी फराइज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फराइज अदा करें। फर्ज सिर्फ ये नहीं है कि फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है ये बस फर्ज है, बहुत सारे फराइज हैं जो भी अल्लाह ताला ने हमारे हमें हुक्म दिए कुरान में, वो फराइज ही हैं। और फिर नवाफिल के जरिए मेरा बंदा मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि वो मुझे महबूब हो जाता है। फिर उसके बाद नवाफिल की बारी आती फर्जों के बाद। ये नहीं कि नफलों को फर्जों की जगह पे रखते हैं, आप तहज्जुदें इतनी पढ़ें कि फजर भी ना अदा हो सके, फिर ऐसे नहीं। और फिर और भी नवाफिल, जहां पे जकात देनी है वहां पे सदके तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जकात की फिक्र नहीं है, उम्रे तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हज किया ही नहीं। तो देखिए, नवाफिल बाद में आते हैं, फर्ज पहले आता है। तो जब फर्ज अदा होता है उसके बाद नफल होते हैं, तो फिर इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह और क्या चीज करीब करती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसजुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, यानी सजूद अल्लाह के करीब करते हैं। और सजदे हम किस में करते हैं? नमाजों में, तो फर्ज नमाजों के अलावा नवाफिल। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल वाकिया में फरमाया है, अगर आपको सूरह वाकिया याद हो, साबिकून के बारे में, साबिकून अल्लवलून है ना, वो क्या है जो साबिकून है? उलाइकल मुकर्रबून, वो मुकर्रब है, वो अल्लाह के करीब है। और साबिक कैसे बनते? साबिकून जो सबकत ले जाने वाले हैं, यानी बाकियों से आगे बढ़े नेकियों में। लोग जो नेकी को सोच रहे हो अभी, आप आगे बढ़ के वो कर ले, फर्स्ट वन बन जाए। साबिक होता है ना सबकत ले जाने वाला, जैसे हम कहेंगे क्लास में सबकत ले जाने वाले कौन से होते हैं? जो फर्स्ट आते हैं, जो पोजीशन लेते हैं, वो सबकत ले जाने वाले हो गए। तो नेकियों में भी सबकत होती है, सोच सोच के नेकियां नहीं करनी होती, सोच सोच के नहीं अल्लाह की फरमाबरदारी करनी होती, भाग भाग के करनी होती है। कि इंसान वेट ना करे, इंसान मशवरे ना करे, जहां पे नेकी का मौका है भाग के कर ले। जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सोचा नहीं था कि मैं ईमान लाऊं कि नहीं लाऊं, फौरन ईमान ले आए। साबिकून, ठीक है, तो साबिकून बनने से भी इंसान अल्लाह से करीब हो जाता है। याद रखिए, जब इंसान परीब होता है ना, तो पता चल जाता है कि ये अल्लाह के करीब है इंसान, जो जिसका जिससे ताल्लुक होता है, जाहिर है उसके साथ बैठ के पता चलता है कि ये किसके करीब है। तो कुर्ब की कोशिश करें ताकि आखिरत में भी कुर्ब मिले, वरना सिर्फ ये कह देना अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस दे दे, ये इतना काफी नहीं है। वहां पे कुर्ब लेना है ना, तो यहाँ पे करीब हो, और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और वो कलाम करेगा लोगों से फिल महद पंगूड़े में, वह कहला और बड़ी उम्र में, वह मीन सालेहीन और नेक लोगों में से होगा। अब देखिए कितनी खुशखबरियां मिल रही हैं, कितनी बातें आके बताई जा रही हैं कि उनका नाम ये होगा, वो वजी होंगे, वो मुकर्रबीन में से होंगे, और वो कलाम करेंगे लोगों से पंगूड़े में। पंगूड़े में कलाम करना का मतलब क्या है कि एज ए न्यू बॉर्न इन्फेंट होंगे, और इन्फेंट बच्चा तो वैसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता, जो न्यू बॉर्न होता है वो कहाँ कुछ बोल सकता है, लेकिन ये उस वक्त कलाम करेंगे जिस वक्त कोई बच्चा होगा भी नहीं करता, वो भी चंद महीने का होता है तो बोलने लगता है। तो उस वक्त ये अपनी माँ की बरात को साबित करेंगे। अब ये मैं थोड़ी सी बात सूरह मरियम से आपको सुनाना चाहती हूँ, यही वाक्या वहां पे तफसील के साथ आया है। तो आप देखेंगे वहां पे जो वाक्या आया है हजरत मरियम का, तो उसमें आया है कि इस किताब में मरियम का भी वाक्या बयान कर, जबकि वो अपने घर के लोगों से अलैहदा होकर मशरक की जानेब आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, फिर हमने उसके पास अपनी रूह यानी जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा, बस वो इसके सामने पूरा आदमी बन के जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला। डर गई, हया वाली थी ना, कि ये कौन आदमी आ गया तन्हाई में मेरे पास। तो उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ और तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। यहां से पता चला कि बहुत सारे फरिश्ते नहीं आए थे, बल्कि जिब्राईल अलैहि सलाम ही आए थे जिनको मलाइका कहा गया। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे, यानी ईसा अलैहि सलाम को, और अपनी खास रहमत, ये तो एक तय शुदा बात है, अल्लाह ने ये बात तय कर दी है, अब ये हो के रहेगी। बस वो हमल से हो गई, उसी वक्त हमल से हो गई, और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर जब उनको दर्द शुरू हुए तो इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती, ये इस शर्म की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग थोड़ी मेरी बात का यकीन करेंगे कि नहीं ये तो बिन बाप की है, ये तो मौजा है, वो कहाँ यकीन करेंगे। इतने में उसे नीचे से आवाज आई कि अफसुरदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पकी खजूरें गिरा देगा, चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख, अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है, मैं आज किसी से बात नहीं करूंगी। यानी उस जमाने में उनके यहाँ चुप का भी एक रोजा होता था। तो कहने लगी, उनको कहा गया कि अगर आपसे अब आपको कोई बच्चा लेके जाइए, कोई इंसान नजर आए तो कहें कि मैंने तो रोजा माना हुआ है। अब ईसा अलैहि सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आए, सब कहने लगे, मरियम तूने तो बड़ी बुरी हरकत की है, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप कोई बुरा आदमी ना था, ना तेरी माँ बदकार थी, यानी तुम कोई ऐसे खानदान से थोड़ी थी कि तुमने ये हरकत कर दी, जाहिर है सब जानते थे कि ये तो एक कंवारी लड़की है और बड़ी नेक पारसा है, तो तुम कहाँ से, तुम्हारा खानदान इतना शरीफ खानदान, और तुमने ये क्या की ये हरकत। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें, यानी अब वो बच्चा पैदा करके लेकर आ रही है लोगों में ना, वो दूर चली गई हुई थी और वहां पे बच्चा पैदा हुआ, अब लाई है। बच्चा बोल उठा, इन्नी अब्दुल्लाह, सबसे पहली बात जो पैदा होते ही उस बेबी ने की वो ये कि इन्नी अब्दुल्लाह। अगर आप सोचें ये बातें, ये जो खुद पैदा हो के कहने वाले मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका गुलाम हूं, आज उन्होंने ईसाइयों ने उनको अल्लाह का बेटा बना के रख दिया। जिन्होंने पैदा होते ही ये कलिमात कहे, और उसने मुझे किताब अता फरमाई, मुझे पैगंबर बनाया, और उसने मुझे बाबरकत किया जहां भी मैं हूं, और उसने मुझे नमाज और जकात का हुक्म दिया जब तक भी मैं जिंदा हूं, और उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। जी हाँ, वो उस दिन पे सलाम है जिस दिन मेरी पैदाइश, और जिस उस दिन पे सलाम है जिस दिन मेरी मौत का दिन, और उस दिन पे सलाम है जिस दिन मैं खड़ा किया जाऊंगा, सलामती ही सलामती है। तो ये सारी बातें की थी उन्होंने, ठीक है। और फिर है ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है सही वाकया ईसा बिन मरियम का, ये हक बात जिसमें लोग शको शुबे में। तो कितनी डिटेल के साथ बता दिया गया कि ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए, तो पैदा होते ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर बात की, तीन बच्चे हैं सिर्फ इस दुनिया के अंदर गुजरे जिन्होंने पैदा होते ही कलाम किया, उनमें एक ईसा बिन मरियम। और कहूलत में कलाम करना, बड़ी उम्र में तो सारे ही कलाम करते हैं, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। असल में कहूलत में कलाम करने से मतलब ये नहीं कि आम कलाम करना, इतनी इम्प्रेसिव टॉक, इतनी जबरदस्त बात करना कि लोग यानी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। देखिए हर कोई तो ऐसी बात नहीं, हर एक की बात नहीं कोई सुनता, हर एक की बात पूरा असर नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती, मगर ईसा अलैहि सलाम जब बात करते थे तो कहा जाता है कि जब छोटे लड़के ही थे ना तो हैकल में जाके इन्होंने दर्स दिया, तो बड़े बड़े उलमा हैरान हो गए। उस वक्त भी उन्होंने उनकी इतना नॉलेज भी था और इतनी उनकी बात इंप्रेसिव थी, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे कहा गया कहूलत में कलाम करेंगे, और कहूलत 30 से 50 ईयर्स की एज को कहा जाता है, तो जो बलूगत की बिल्कुल एज होती है, जिसमें ये भी कहा जाता है जिसमें थोड़ी थोड़ी सफेदी आने लगे बालों में। और ये ईसा अलैह सलाम जब तक जमीन पर थे उनकी ये एज नहीं आई, 30 ईयर्स पे तो उनको नबुवत ही मिली थी, और उसके बाद कुछ अरसे में ही उनको उठा लिया गया। तो ये कब वो कलाम करेंगे, इसका मतलब है वो दोबारा दुनिया में आएंगे और कलाम करेंगे, इसलिए कहा गया कि कहूलत में भी वो ऐसा कलाम करेंगे। वमीन सालेहीन, और सालेहीन में से होंगे, नेक बंदों में से होंगे। बाकी दुनिया दुआएं करती है, अल्लाह हमें साले औलाद अता फरमा, और हजरत मरियम को अल्लाह ताला खुद खुशखबरी दे रहे हैं कि वो साले होंगे। और साले वो होता है जिसका जाहिर और बातिन अच्छा हो, जैसे हम कहते हैं इसलाह करना, इसलाह भी इसी से है, यानी हर एरिया में जिंदगी के, जाहिर है, बातिन है, तन्हाई है या लोगों में है, दिल में है या अमल में है, प्राइवेट जिंदगी में है, पब्लिक जिंदगी में है, हकुकुल्ला में है या हकुकुल इबाद में है, हर एक जगह पे वो साले हो, हर एरिया में साले हो। जैसे हम तो ये होता है ना कि हम एक जगह पे अच्छे होने लगते हैं तो दूसरी जगह हमारी खराब हो जाती है, वहां पे कोई मसला हो जाता है, दूसरी जगह में कुछ सही करने लगते हैं तो कहीं और कोई मसला हो जाता है, क्योंकि हम सारे ऑर्डनरी पीपल हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला के ऐसे चुने हुए थे कि जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर, कि हर हर फेज ऑफ लाइफ में जबरदस्त, सुभान अल्लाह। तो वो मीना सालेहीन होंगे, तो कितनी खुशखबरियां हो गई, 6 खुशखबरियां अल्लाह ताला ने दे दी हजरत मरियम को कि कैसा बच्चा अल्लाह ताला आपको दे रहा है, वजी भी होगा और दुनिया और आखरत में वजी होगा, मुकर्रब होगा, कलाम करेगा ऐसे कि जैसे कभी किसी ने ना कलाम किया, और माँ की गोद में कौन कलाम कर सकता है। और फिर जवानी में, बड़ी जवानी में आके, बड़ी उम्र में आके, कहूलत में आके इतनी ऐसी बातें करेगा कि जो लोगों को इम्प्रेस कर दे, और वो सालेहीन में से होंगे। हालत वो कहने लगी, अब परेशानी तो ये लगी है ना, अब कैसे ये होगा, अल्लाह रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, ना मेरे बेटा कैसे होगा, बच्चा कैसे होगा, वलम यमससनी बशर। अब ये नहीं था उनको कोई शक था कि अल्लाह ताला कैसे ये कर सकता, नहीं, इसलिए कि वो जैसा उनका मकाम और मर्तबा है अल्लाह ऐसे ही नहीं चुन लेता। तो हमें पता है कि वो जिस कदर नेक और पाक बीबी थी, वो ये नहीं कह रही कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा, वो कह रही है लेकिन अल्लाह कैसे होगा, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह कैसे तू तो जिंदा करता है मुर्दों को, मुझे तो पता चले, मुझे दिखा तो सही, अल्लाह ताला कैसे होगा, मेरे तो एक नेचुरल रिएक्शन है ना, मुझे तो किसी ने छुआ भी नहीं, यानी असबाब के तहत उस दुनिया के अंदर चीजें होती हैं, मुझे तो किसी ने नहीं छुआ, छुए से मतलब क्या है कि मतलब मेरे साथ तो अमले जौजियत किसी ने नहीं किया। फरमाया कदालिकिल्लाहु यखलुकु मा यशा, इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करता है जो चाहता है, अल्लाह की कुदरत में है, मुर्दे से जिंदा निकाल दे, जिंदा से मुर्दा कर दे, बिन माँ बाप के भी बच्चा पैदा करते, कि आदम अलैहि सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया कि बिन माँ बाप के पैदा हुए ना, इस तरह अल्लाह ताला चाहे तो बिन वालदैन के पैदा करते, और अल्लाह चाहे तो बिन बाप के पैदा कर दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, और सारी दुनिया को विद माँ बाप पैदा कर दे, तो अल्लाह जैसे चाहे पैदा कर दे, वो वसाइल का मोहताज नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, हाँ उसने दुनिया का निजाम चलाने के लिए असबाब पैदा किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असबाब के बगैर कर नहीं सकता, ये है ईमान कि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। इसी से मुझे एक बात याद आई, किसी ने मुझे कहा कि वो कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई और वो चाहती नहीं थी कि ये बच्चा पैदा हो, क्योंकि चौथा बच्चा था, तो कहने लगी कि मैंने इतना जोर लगाया कि मैंने अपने पेट के ऊपर सिलेंडर तक रखे, भागी दौड़ी ऊपर नीचे, जिस जो भी मैं कर सकती थी ना, कहती हैं कि मैंने अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि ये बच्चा गिर जाए किसी तरह, लेकिन वो बच्चा पैदा हुआ, माशाल्लाह अब तो जवान हो गया, लेकिन देखें अल्लाह जो चाहे पैदा करे वो उसकी मर्जी है, और कहीं बहुत एहतियातें होती हैं और बच्चा फिर भी नहीं रहता, तो ये अल्लाह की मर्जी है, उसकी मशीयत है, वो जैसा चाहे पैदा करे और जिसको चाहे पैदा करे, ये तो हमारे ही होते ना क्वेश्चंस, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, अब ऐसी कोई बात हम देखें ये हो कैसे सकता है, हम जरा सी कोई चीज देखते हैं ना तो हम कहते हैं ये कैसे, हम ये नहीं सोचते अल्लाह ताला जो चाहे करे, इदा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून, उसके लिए तो इतना आसान है, इतना आसान है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है या किसी काम का फैसला कर लेता है कि ये होना है, तो उसने बस ये कहना होता है कुन, हो जा, तो वो हो जाता है, सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने कलमा कुन से ही तो पैदा किया, जैसे मैं आपको तीन चीजें बताती थी अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा की, कलमा कुन से पैदा किया अल्लाह ताला ने, इस जमीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले कलम को पैदा फरमाया और उससे फरमाया लिख, तो उसने कहा अल्लाह क्या लिखूं, अल्लाह ताला ने फरमाया जो भी कयामत तक होने वाला लिख दे, और उसने लिखना शुरू कर दिया कलमा कुन से, अल्लाह ताला ने उसको सारा कुछ लिखवा दिया, तो अगर हमें इसका एतबार हो ना, अगर हमें इस चीज पे यकीन हो, तो फिर हमें शकूक व शुभात ना हो, फिर हमें क्यों कैसे ये ना हो, असल में शकूक आते ही इसलिए कि हमें अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा नहीं है कि वो तो कुन कह के करने वाला है, मेरे मसले कैसे हल होंगे, ऐसे तो कभी हल हो ही नहीं सकते, क्यों क्यों नहीं हो सकते, अल्लाह ने सिर्फ कुन कहना है और हम सबके मसाइल हल हो जाने, तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह जो भी हमारे मसले हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, अल्लाह उनके हल के ऊपर कलमा कुन फरमा दे, जो भी बीमारियां हैं उनके लिए शिफा के लिए कलमा कुन फरमा दे अल्लाह, जो भी हमारी हाजतें हैं, जो भी हमारी दुआएं हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए कुन फरमा दे, उसके लिए इतना आसान है, तो जानने कि आपका रब कौन है, और जानने जरूर कि वो अला कुल्ली शई इन कदीर है, कुल्ली शई इन, कुल्ली शई इन, कुल्ली शई इन में क्या कोई चीज रह जाती है, हमारी अकल छोटी हो सकती है, हमारी अकल नहीं पहुंच सकती कुल्ली शहीन तक, कुल्ली शहीन इतना बड़ा कलमा हो गया ना, कुल्ली शहीन ये दो अल्फाज, इतनी बड़ी कायनात को घेरे में ये अल्फाज कुल्ली शहीन, हम तो बयान भी नहीं कर सकते वो क्या क्या कर सकता, तो मैं और आप क्या चीज है। अच्छा एक इब्ने अब्बास का कॉल मुझे याद आ गया, बड़ा ही प्यारा कॉल, कि ये जमीन, सातों जमीनें, आसमान, जो कुछ इसमें है, जितनी पूरी कायनात है ना, जितनी पूरी कायनात है, सोचें तसव्वुर करें कि इस कायनात को अभी तक इंसान पा नहीं सका, ये कायनात कितनी है। ये सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह के हाथ में ऐसे है जैसे कि एक जर्रा, और जर्रे की मिसाल ऐसे दी जैसे आपकी खिड़की में से वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते ना, आपको रोशनी में नजर आते, धूप आ रही होती उसमें नजर आ रहे होते ना, वो छोटे छोटे, वो एक जो है पार्टिकल, वो अल्लाह ताला के हाथ में ये जमीन और आसमान और कायनात ऐसी है जैसे वो पार्टिकल। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और इस अगर वो एक पार्टिकल है तो जमीन क्या होगी, और मैं और आप क्या होंगे अल्लाह के आगे। जब खड़े होते ना नमाज में, उस वक्त सोचा करें, अल्लाह मैं इतनी छोटी हूँ, अल्लाह मैं इतनी छोटी हूँ, ये इन बातों को सोचा कर, अल्लाह मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कितनी मामूली हूँ, कितनी हकीर हूँ, अगर पूरी कायनात ऐसी है तो मैं क्या हूँ, और वो इतनी बड़ी जात है जिसने किसी भी काम जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल, हम कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, उसने सिर्फ कहना कुन। वो जात कितनी अजीम है फिर, वो जात कितनी अकबर है फिर, जिसके हाथ में ये एक, वो मैं उसको पता नहीं उसको क्या कहते होंगे, उसको जर्रा भी हमारे नजदीक कोई बड़ी चीज शायद हो सकती है, कि ये पार्टिकल जो है, इतनी मामूली जर्रा जो है, इस तरह है कायनात अल्लाह के हाथ में, सुभान अल्लाह। तो फिर क्यों अपने मसाइल के ऊपर हम ये सोच लेते हैं नहीं है इनका कोई हाल, नहीं ये हो सकता, सब कुछ हो सकता है अल्लाह के इज़्ज़त से। तो उसने बस कहना है कौन तो हो जाना है, तो है मरियम आप क्यों इसकी फिक्र करती, और वो बच्चा कैसा होगा, वो ऐसा, आप देखें अभी और इसकी तारीफें इस बच्चे की चल रही हैं, अभी खत्म नहीं हुई, वो कैसा होगा। वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता, और अल्लाह उसको तालीम देगा, यु उसको यानी इस बच्चे को कौन तालीम देगा, अल्लाह, वही अल्लाह जिसकी पहले बात आ रही है, अल्लाह ताला उसको तालीम देगा किस चीज की, अल किताब, किताब की, क्या है किताब, किताब से मतलब पिछली किताबें भी हो सकती हैं, किताब से लेकिन दूसरा माना कतबा का होता है लिखना, लिखाई, तो किताबत यानी लिखना सिखाएगा अल्लाह ताला उसको, और पिछली किताबों की तालीम सिखाएगा अल्लाह ताला उसको। तो अब कहने को ये बात बड़ी लगती है, लोग बाज दफा कहते हैं कि हाय बच्चा हो जाएगा, कौन इसकी तालीम का करेगा, कौन इसको सिखाएगा, कौन इसकी तरबियत करेगा, कौन इस, हमने देख लिया ना वो बड़े बड़े माँ बाप भी होते हैं, तब भी वो तो नहीं बच्चों की तालीम कर सकते, कितना जोर लगाते हैं नहीं बच्चा पढ़ता, और कहीं टाट के किसी स्कूल में बैठा हुआ बच्चा कहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक पहुंच जाता है, हार्वर्ड तक पहुंच जाता है, ऑक्सफोर्ड तक पहुंच जाता है, कौन सिखाता है, इल्म कौन देता है, अल्लाह। ये इंसानों को हाँ कोशिश कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं, सबब इख्तियार कर सकते हैं, मगर इल्म अल्लाह ने देना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि आपने कोशिश करनी है, लेकिन साथ दुआ क्या करनी है, रब बिजी दिनी इल्मा, दुआएं अल्लाह से करनी है, अल्लाह है इल्म देने वाला। इमाम इब्ने तैमिया जब कुरान में कोई बात समझ नहीं आती थी ना, तो दुआ किया करते थे, ए इब्राहिम को इल्म देने वाले मुझे भी इल्म दे दे, ए सुलेमान को इल्म देने वाले फहम देने वाले मुझे भी फहम अता फरमा दे, ये उनकी दुआएं होती थी। तो इसलिए इल्म अल्लाह देता है, इल्म के लिए उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए कि अल्लाह अपने इल्म के खजानों में से मुझे भी थोड़ा सा अता फरमा दे। अल्लाह सिखाएगा उनको किताब, क्योंकि हजरत मरियम देखें अब ये सोच रही होंगे कि बिन बाप के बच्चा इसको कौन देखेगा, क्या होगा। अल्लाह ताला ने इसकी तालीम का इंतजाम भी अपने जिम्मे ले लिया। जहां तक पालने की बात थी, आप देख लें हजरत मरियम को की नशोनुमा किसने की, हमने पिछले सबक में पढ़ा था, अल्लाह ने। इसीलिए आप देखें दुनिया में बाज बच्चे होते हैं, माँ बाप दोनों फौत हो जाते हैं और वो बच्चे अल्लाह पालता है ना। ऐसा तो नहीं होता जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं वो बच्चे में मर जाते हैं। वल हिकमत, और हिकमत, हिकमत सिर्फ चीजें पढ़ने से नहीं आ जाती, विजडम, विजडम, विजडम भी इसका मतलब किया गया और इसका मतलब नाफे इल्म भी किया गया, नफामंद इल्म। विजडम क्या होती है, हिकमत क्या होती है, कि इंसान को सही वक्त पे सही फैसला करना आ जाए। ये नहीं है कि जैसे हमने पढ़ लिया होता है ना, फिर उसके बाद जब अमल का वक्त आता है तो क्या होता है, वो ये भूल ही जाता कि हमने क्या पढ़ा था, बाद में याद आता है ओहो इस टाइम पे तो ये अमल करना था। ये नहीं, हिकमत भी अल्लाह की देन, युतिल हिकमत मैयशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला से हिकमत भी मांगनी चाहिए, हिकमत खैर और शर में तमीज भी है, इंसान को पता चले कि खैर क्या है और शर क्या है। और तौरात और इंजील, इन दोनों का भी इल्म अल्लाह ताला उनको सिखाएगा। और ऐसा अल्लाह ने सिखाया था कि ईसा अलैहिस्सलाम हाफिज थे तौरात के, और इंजील तो उन पे ही उतरी थी, उसके हाफिज थे। तो कितनी डिग्रियां अल्लाह ताला ने बता दी कि इतनी डिग्रियां होंगी ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ये कितनी बड़े ऑनर की बात है। इल्म का मिल जाना, यानी इल्म को अल्लाह ताला ने, इससे इल्म की अहमियत पता चलती है। इल्म को अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए फरमाया, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह उनको इतनी दौलत देगा, इतनी बादशाहत होगी, इतना ऐसे होगा, इल्म की बात की है। कदर मंजिलत समझ आती है इल्म की, कि अल्लाह के हाँ कितनी इल्म की अहमियत है, ये पैगंबर के लिए ये फरमाया। वरसूलन इला बनी इसराइल, और रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ, वो रसूल बनेगा बनी इसराइल की तरफ। यानी आज जो ये लोग दुनिया जहान के अंदर अपने दीन की दावत देने के लिए घूमते हैं, तो याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत की तरफ रसूल बना के नहीं भेजे गए, सिर्फ बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। उनको ये नहीं कहा गया था आपने पूरी दुनिया में फिर फिर के ये मजहब फैलाना है, तो ये खास थे, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी दुनिया में आने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से पूरी इंसानियत के लिए नबी बना के भेजे गए। अरसलना का लिन्नास ही रसूल, अल्लाह ताला ने फरमाया आपको पूरी सब इंसानों के लिए रसूल बनाया गया, सिर्फ एक कौम अरब के लिए नहीं बनाया गया था। तो ये तो इनका है ही नहीं था काम, मगर डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो रसूलन इला बनी इसराइल, ये भी बता दिया कि बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजे गए हैं। तो अब आप इससे यहां तक आप देखें कि कितनी सारी फजीलतें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को अता फरमाई। और अगर कोई आज ईसाई बनी इसराइल से बाहर जाके तबलीग करता है, तो वो तो इन इसके खिलाफ हो गया। हिकमत, दानाई, और इतना ज्यादा इनको तौरात का इल्म था कि जब बड़े बड़े उलमा इनसे बात करते थे तो डायरेक्ट जो आयात थी तौरात की वो कोट करते थे। हिफ्स भी थी इनको, ज़हीन भी बहुत थे, लिखना भी इनको आता था ऐसा, और बहुत खूबसूरत लिखाई थी इनकी, अपने हाफ़ज़े से तौरात लिखा करते थे, और ऐसे ऐसे दलायल देते थे उलमा को कि वो बिल्कुल लाजवाब हो जाते थे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ अल्फाज को पढ़ लेना ये इल्म नहीं हो जाता, सिर्फ कुरान पाक के लफ्जी तर्जुमे को रट लेना इल्म नहीं हो जाता, ये काफी नहीं है। जब तक के उसके जरिए पर हिकमतें ना आए, जब तक के उसकी डेप्थ ने ना जाए, गौर व फिक्र ना करे, तभी पता चलेगा ना कि सही क्या है और गलत क्या है। तभी तो हिकमतों के खजाने खुलेंगे ना, तभी तो नफामंद इल्म बनेगा ना। और नफामंद इल्म और कैसे बनता है, जब इंसान उसको अप्लाई करता है तब नफामंद होता है, वरना क्या है। या आपने रजिस्टर भर भर के रखते रहे, फोल्डर बनाते रहे, हर पारे के खूबसूरत नोट्स बना के रखे हैं, वो नफामंद तो नहीं है, वो तो बस एक बोझ हो जाएगा। जैसे आगे आप अल्लाह ताला खैर रखे तो जब हम आगे पढ़ेंगे सूरह जुमा में, अल्लाह ताला ने यहूद की मिसाल दी है कि उनके लिए इल्म कैसे है, जैसे गधे के ऊपर आप कोई चीज भार डाल दें तो उसको पता ही नहीं है, उसको नहीं पता मैंने किताबें उठाई हुई हैं या मैंने रेत उठाई हुई है या मेरे ऊपर पत्थर डाले हुए, उसके लिए बस बोझ ही है। इसी तरह फिर वो इंसान है जो अपने इल्म से फायदा नहीं उठाता, उस पर अमल नहीं करता, उसके लिए ये इल्म भी बोझ है, बस उसने किताबों का बोझ उठाया हुआ। आपने रजिस्टर भर भर के रखे हुए, एक आपके घर में इजाफी जगह ही ले रहे हैं वो, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, क्या फायदा हुआ फिर। तो उनको वहां पे कंडेम किया गया कि ऐसे इल्म का फायदा नहीं है, इल्म वो ही है जो अमल में आ जाए। अब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और वो जवान हो गए, उनको नबुव्वत मिल गई। अब क्या है, अब आगे ईसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग हैं ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोट किए हैं, कि उन वो मुजजात जो लेकर आए थे, अन्नी बेशक मैं, कद जी तो को मैं लाया हूँ तुम्हारे पास भी आयत मैं रोपे को, एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से। और एक निशानी का मतलब क्या है, मुजजात। तो उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुजजात लाया हूँ अल्लाह ताला के पास से। और मुआवजा किस लिए अल्लाह ताला देते हैं, मुआवजे का मकसद क्या होता है, मुआवजे का मकसद रिसालत की तस्दीक होता है कि ये वेरीफाई हो जाए कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए। क्योंकि मुआवजा क्या होता है, आजिज करने वाली चीज, और वो लोगों को आजिज कर देता है, कोई उसका तोड़ नहीं ला सकता, कोई उसको बयान नहीं कर सकता कि ये कैसे हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से ही हो सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जो चीज़। अब देख लेना, मूसा अलैहिस्सलाम को मौजा मिला, आसा जो है वो सांप बन रहा है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम के भी मौजे हैं आप देखेंगे, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो मौजा आजिज कर देता है लोगों को, कि लोग मानने पर मजबूर हो जाएं कि अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल है, और ये जो बात कह रहा है ये अल्लाह ताला ने फरमाई है। ठीक है, ये होता है मौजे का मकसद। मौजे सिर्फ लोगों को मैसमराइज करने के लिए, उनको बस मुतासिर करके और अपना बनाने के लिए, इसके लिए नहीं होते कि लोगों को खुश किया जाए, जरा तमाशे दिखाए जाए, इसलिए नहीं होते मौजे। ये जादूगरों का काम होता है, उनका काम होता है लोगों को एंटरटेन करना, मौजे लोगों की एंटरटेनमेंट का काम नहीं करते। ठीक है, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनि कहैअति अत्तैर, मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए मट्टी से मानिंद, एक मानिंद शक्ल के एक परिंदे की, फअनफुखु फीह, तो मैं फूंक मारूंगा इसमें, फयकून उत्तैरन बिइज़्निल्लाह, तो ये हो जाएगा परिंदा अल्लाह के इज़न से। अब ये उनको अल्लाह ताला ने मौजा दिया था क्या, कि वो एक मट्टी लेते थे और गीली मट्टी लेके उससे परिंदे की शक्ल की तरह एक चीज बनाते थे और उसमें फूंक मार देते थे और अल्लाह के इज़न से वो जिंदा हो जाता था। अब ये देख लेना, अब ये ऐसी बात तो कोई भी नहीं कर सकता, जो कोई देखे उसको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वाकई ये तो अल्लाह के रसूल ही है, ये वाकई ये जो ये तो ना जादू से हो सकता है ना किसी और चीज़ से। तो क्या इस तरह से मट्टी से परिंदे बनाना या इस तरह से करना, ये स्कल्पचर्स बनाना क्या अलाउड है, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने क्यों बनाया, भी इदनिल्ला अल्लाह के इज़्ज़त से, क्योंकि ये मौजज़ा था। हदीस में हदीस कुदसी है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी खल्क की तरह तख्लीक करे। तो ये अलाउड नहीं है कि इंसान मूर्तियां बनाए या इंसान हाथों से ऐसी तस्वीरें बनाए जो कि मुकम्मल हो। अगर बनानी भी हो इल्म लेने के लिए तो इतनी बना सकती हैं जिसमें जो मुकम्मल ना हो, जो अधूरी हो। मसलन नाक नहीं है, होंठ नहीं है, आंखें ही नहीं है, या ऐसी कि मतलब अधूरी सी हो, लेकिन डिटेल में जाके उसको बनाना ये अलाउड नहीं है। इस तरह इन प्रोफेशंस की तरफ भी नहीं जाना चाहिए जिनमें ये चीजें हों, किसका स्कल्पचर्स बनाने हैं, सामने बिठा बिठा के पूरी एक एक डिटेल के अंदर जाना है, ये हमारे दीन में नहीं अलाउड। फअनफुखु फी फयकून तैरन बिइज़्निल्लाह वअब्रिउल अकमह वल अबरस वअहलील मौता बिइज़्निल्लाह। और मैं अच्छा करता हूँ मादरजाद अंधे को, यानी पैदाइशी कोई अंधा, उसको हाथ फेरते थे और वो देखने लगता था। वल अबरसा, और कोढ़ी, लेप्रसी जो थी ना दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह जिस बीमारी का आजकल ये चर्चा है अल्लाह ताला इसको दुनिया से जल्दी खत्म कर दे, मगर लेप्रसी जो थी ये इस कदर लॉन्ग टाइम तक लोगों को इसका कोई इलाज नहीं था, हजारों साल तक ऐसे लोगों को लोग अलग कर देते थे, शहरों से निकाल देते थे, उनसे कोई मेल मुलाकात कोई ताल्लुक नहीं रखते थे क्योंकि हमें भी ना लग जाए, कंटेजियस बीमारी थी। तो वो लोगों के ऊपर हाथ फेरते थे कोढ़ी पे और वो ठीक हो जाता था, जबकि इसका कोई इलाज नहीं था वहां पे। तो अल्लाह ताला जब चाहे किसी बीमारी का इलाज अता फरमा दे, लेकिन वो ऐसे वक्त में जिस वक्त किसी बड़े से बड़े हकीम और उनको कोई इलाज नहीं मिलता तो वो सिर्फ हाथ फेरने से ठीक कर देते, वाहियल मौता भी इब्निल्ला, और मुर्दे को जिंदा कर देते थे, चाहे वो मुर्दा अभी रिसेंटली फौत हुआ हो या हजारों साल से फौत हुआ हो, उसको जिंदा कर देते थे। मगर कहते हैं भी इज्निल्ला मैं करता हूँ। इसमें एक चीज क्वेश्चन है कि क्यों उन्होंने इसी किस्म के मौजजात दिखाए कि वो उनको जिंदा करके दिखा रहे हैं, अंधे को ठीक कर रहे हैं, कोढ़ी को ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों दिखाए? इसलिए क्योंकि वो टाइम मेडिसिन का था, मेडिसिन बहुत ब्लूम कर रही थी, बहुत ज्यादा तिब के अंदर बहुत लोग माहिर थे, बहुत जबरदस्त थे, और उसी का दौर दौरा था, जैसे आज साइंस का दौर दौरा है। आज साइंस के ऊपर सारी जो आप चीज साइंस से निकाल के ले आते हैं लोग कहते हैं हाँ भाई उसको मान लो क्योंकि साइंस ये कहती है, हर चीज में ये देखते हैं। या टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, उस जमाने में मेडिसिन का दौर दौरा था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जादू का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में शायरी का था। तो अल्लाह ताला ने मौजजात भी रेलिवेंट दिए ना, इररेलीवेंट मौजजात होते तो कौन देखता, रेलिवेंट जो उस जमाने में लोग जिनको बहुत बड़ी चीज समझते थे, हकीम बड़े बड़े होते थे, लेकिन उनसे भी इसका इलाज नहीं निकल रहा था। और आज तक देखें इलाज नहीं है, अंधा जो पैदाइशी अंधा है उसका कोई इलाज नहीं है कि कोई इलाज करके उसकी आंखें ठीक कर दी जाए, नहीं। ट्रांसप्लांट के लिए भी देखें कितना मुश्किल है, लेकिन उसकी अपनी आंखों को कोई ठीक नहीं कर सकता। इसी तरह मुर्दे को जिंदा करना कितनी साइंस ने तरक्की कर ली, आज तक ये नहीं हो सका। मट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारना, ये तो मौजजात है, सरासर मौजजात है। तो वो साथ साथ कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, इंजील में ये बातें हैं लेकिन बिइज़्निल्लाह के लफ्ज नहीं है। सोचें आप जरा उन्होंने किस तरह से तहरीफें की हैं। तो बिइज़्निल्लाह हर दफा कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, क्यों? इसलिए कि वो बताना चाहते हैं कि मेरी अपनी ताकत नहीं है, मैं कोई चीज नहीं हूं कि मुझे को पूजने लगे, अल्लाह की इबादत करूं क्योंकि ये सब उसके इज़्ज़त से हो रहा है, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक बात अपने लिए हम ले सकते हैं कि हम छोटे छोटे काम भी करते हैं ना, कोई खाना अच्छा बना लेंगे या कोई अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या कोई कोई भी अच्छा काम कोई कर लेंगे तो लोग तारीफ करते हैं, तो हम भी इतने ला नहीं कहते, हम वमा तौफीक इल्ला बिल्ला नहीं कहते कि मेरी तो कोई तौफीक नहीं, मगर अल्लाह ने दिया ये अल्लाह ताला का करम है। ये भूल जाते हैं कि उस नेमत को या उस चीज को जो हम कर पाए हैं उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें हमेशा। किसी भी कोई भी आप काम कर पाए ना, तो वो वाकई अगर सोचे वो वाकई अल्लाह ताला के करम के बगैर तो नहीं हो सकता था। अल्लाह ना चाहता तो मैं और आप कहाँ से कोई चीज कर सकते हैं? हम तो एक सांस तक नहीं खुद ले सकते, ये भी इज़्निल्लाह है। तो कहाँ हम क्रेडिट लेते फिरते, हाँ नहीं जी मैं तो बड़ा अच्छा बोलती हूँ, हाँ नहीं जी मैं तो बड़ा अच्छे ये काम करती हूँ, हाँ नहीं मैं तो लायक ही बहुत हूँ, हाँ नहीं तो मैं मेहनत ही बहुत करती हूँ। नहीं, इज़्निल्लाह। और ये सिर्फ मुंह की बात नहीं होनी चाहिए कि बस एक स्टेटमेंट है मा तौफीकिल्ला बिल्ला, बस हमने ये सीख लिया और हमने इसी को कह दिया। नहीं, दिल से ये पुकार होनी चाहिए कि मेरा कोई कमाल नहीं, सब अल्लाह की तरफ से। मैं क्या, मैं तो अल्लाह ना चाहे तो एक लफ्ज भी क्या अदा कर सकती हूँ मुंह से, मेरी क्या काबिलियत है। तो अपनी नालायकियों पे इंसान सोचे ना तो सब वो हो जाता है कि देखो मैं क्या क्या उल्टे सीधे भी काम करती हूँ, क्या क्या मेरी नालायकियां, मैं तो ये समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती, और मैं किस बात का क्रेडिट लेती फिर। तो इतने बड़े पैगंबर हो के लोगों को अपने सामने ये मुजजात दिखा के खुद नहीं फूले नहीं समा रहे कि मैं कितनी बड़ी चीज हो गया हूं, देखो ना फिर आखिर मेरा कमाल, देखते ही रह जाओगे, ऐसे कहते हैं ना लोग अल्फाज, क्या बात है फिर मेरी, को तुम मेरे साथ रहोगे तो बड़ा कुछ देखोगे, ऐसे इस किस्म के डायलॉग मुतकब्बिराना है। और ये देखे आजी, ये आयात भी आजी सिखाती है, इतने बड़े कारनामे जो कि कोई आज तक ना कर सका, उसके ऊपर भी कह रहे हैं भी इतनिल्ला। पैगंबरों का उसवा जो है, पैगंबरों की जिंदगी जो है, उससे हम सीखते हैं। मैं और आप क्या कर लेते होंगे, कौन से ऐसे कारनामे हमने कर दिए, फिर भी उन जो छोटे लोग हैं ना आप, तो बस इन्हीं चीजों के ऊपर फूलते रहते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके अंदर जो जितना बड़ा होता है, वो कहते हैं ना जो बर्तन खाली होता है वो बचता बहुत है, जो भरा हुआ होता है वो बचता नहीं। तो जो बर्तन खाली हो कुछ है ही नहीं, तो अपने वो कारनामे बयान करते रहना, अपनी ही चीजों के ऊपर फूलते रहना, खुश होते रहना, अपना आप को ही बड़ा बताते रहना, या कोई तारीफ कर दे तो उसके ऊपर ही फूलते रहना, ये छोटे लोगों का काम होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर वह उन्नबी हुकुम बीमा तकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें खबर देता हूं उसकी जो तुम खाते हो, वमा तद्दाखिरूना, और जो तुम जखीरा करते हो अपने घरों में, यानी आप क्या खा के आए हैं मैं इसका तुम्हें बता देता हूँ। तो यानी कोई घर से कोई लंच करके आया है, कोई भूखा है, क्या खाया आज उसने, या घर में क्या स्टोर किया हुआ। अब हमें तो खुद भी नहीं याद रहता हमारे फ्रिज में क्या पड़ा होता है, कभी पीछे कोई चीज पड़ी रह जाए तो खराबी हो जाती, वो याद ही नहीं रहता। वो कहते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर में क्या स्टोर किया, फ्रीजरों में चीजें पड़ी रह जाती, अब हमारे फ्रीजर में कितनी चीजें हो जाती। वो कहते हैं मैं बताऊंगा कि तुमने क्या मसलन है आपके फ्रीजर में है, फ्रिज में है, वो उसको बता सकते थे। और यहाँ घरों में क्या और स्टोर किया हुआ, बेसमेंट में क्या स्टोर हुआ वह, अलमारियों में क्या कपड़े स्टोर हुए हैं, या क्या और चीजें स्टोर हुई हैं, तो वो जो जखीरा किया हुआ उसका भी बता दूंगा। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल्लकुम, इसमें एक निशानी है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, तो इस ये सब अल्लाह की तरफ से, मगर इन बातों का, इन निशानियों का भी फायदा कौन उठा सकता है, जो ईमान रखने वाला, यानी क्या मतलब ईमान लाने वाला, जिसका मिजाज ऐसा है, जिसकी नेचर ऐसी है कि दलील को मान के और फिर तकबुर ना करे, जिद में ना आ जाए, हठधर्मी, जैसे कई लोगों को ना आप कितना मर्जी बता दें, कितना मर्जी समझा दें, उनके सामने चीज रख देंगे, वो उन्होंने कहना नहीं मैं ना मानू, उन्होंने मानना ही नहीं है। तो जिनके अंदर जिद हो तो फिर आप उनको सूरज भी दिखा देंगे ना कि सूरज चमक रहा, तो उन्होंने कहना नहीं चाहिए, तो सूरज आएगी, जिद वाले को नहीं आप मनवा सकते, जिसमें हठधर्मी हो या जिसमें तकब्बुर हो कि मैं क्यों मानूं, अब उसको आप जो मर्जी दलाइल दे दें, आप निशानियां कुछ भी दिखा दें, कुरान की आयतें लोगों को दिखाई जाती नहीं मानते, हदीस दिखाई जाती नहीं मानते, क्या चीज होती है? बस जिद, मैं क्यों झुकूं इसके आगे, तकब्बुर अपने अंदर कि मेरे पास इतना नॉलेज है मैं क्यों। तो अगर ये चीजें हो ना, फिर नहीं इंसान मानता, फिर उसका कोई इलाज नहीं। हाँ, जो ऐसा इंसान है कि जिसका मिजाज ये है, उसने देखा, उसने कहा हाँ वाकई ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकता है, और आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। आप अगर आम इंसान होते, दूसरे इंसानों की तरह होते, तो आप ये नहीं कर सकते थे, तो वाकई अल्लाह ताला ने आपको ये कुदरत दी होगी। तो वो मुआवजे में अल्लाह की कुदरत को पा लेते हैं। अच्छा, आप कई लोग पैगंबर सिर्फ मुआवजा दिखा सकते हैं, उसके बाद जो आम लोग हैं उनके नेक लोगों से करामात भी जाहिर हुई, तो कई लोग जब उनकी करामतें देखते हैं तो बस उनके आगे ही झुक जाते हैं। नहीं, आप ही बड़ी चीज है, किसी को ऐसे को देख लें, किसी से कोई करामत जाहिर हो गई तो बस उसको पूजने लग शुरू कर देते हैं। नहीं, उससे भी अल्लाह तक जाए, जैसे जकरिया अलैहि सलाम ने हजरत मरियम को देखा बेमौसमे फल, तो वो उनकी तरफ नहीं झुक गए, अल्लाह की तरफ झुके। ठीक है, तो किसी में कोई करामत, कोई ऐसी आप गैर मामूली चीज देख लेते, अल्लाह की तरफ झुका करें, उस बंदे के साथ नहीं अटैच हो जाए कि मैं तो बस इसको ही बस अब पूजने लगूं, इसके आगे ही झुक जाऊं, इसी को कहूं तुमने ही मेरे काम कराने हैं, तुमने ही मेरी दुआएं भी करनी है, अब तुम्हारा जिम्मा है भाई। ये नहीं सही। आप देख रहे ना, वो सारा वक्त अल्लाह के साथ जोड़े हैं, इन्ना फी ज़ालिका ला आया, इसमें एक निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान लाने वाले। तो ये होती है दावत का तरीका, कि लोगों को अल्लाह से जोड़ा जाए, अपने आप से ना जोड़ लें। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये निशानी है तुम्हारे लिए, तुम पहचान लो मैं अल्लाह की तरफ से रसूल आया। और बनी इसराइल के पास ये आखिरी रसूल आए थे, इनके बाद कोई रसूल नबी बनी इसराइल में नहीं आया, और अल्लाह ताला ने इनको भी इसलिए भेजा कि लोग समझ जाएं, लोग जो हैं अब ये बात को इतराफ कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से रसूल आए हैं, और हमने अब अपनी इसलाह करनी है इनके अंडर रह के, क्योंकि वो उन्होंने बहुत नबियों को कत्ल किया था, बहुत इनके जवाल का टाइम था, कानून को तो बड़ी सख्ती से पकड़ते थे, बड़े उसकी बाल की खाल उतारते थे, मगर अपने अंदर कोई रूहानियत नहीं थी, कोई अल्लाह की मखलूक के लिए रहम शफकत हमदर्दी कुछ नहीं थी, बस एक बेजान सा ढांचा दीन के नाम का लेके बस उस पे सख्तियां करते थे। यही थे ना ईसा अलैहि सलाम, एक दिन उन्होंने देखा कि लोग एक औरत को पत्थर मार रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको कह कि ये जानिया है, तो उन्होंने वहां से गुजर रहे थे तो फरमाया कि इसको पत्थर मारे वो जिसने कभी खुद जिना ना किया, तो सब ने हाथ नीचे कर लिया, ये हाल था इनका, और चले गए सर झुका के। ईसा अलैहि सलाम ही फरमाते थे ना, इन लोगों का हाल देख के फरमाते थे कि तुम साबत ऊंट जो निकल छान जाते हो, और कुछ ऐसे था, और मच्छरों को छानते रहते हो और साबते ऊंट निगल जाते हो, इस तरह की कोई बात थी, यानी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, छोटे छोटे कामों के ऊपर बाल की खाल उतारते रहते हैं। सूद इनके अंदर इतना ज्यादा था, एक दफा आए और देखा कि ये सूद के ऊपर कर रहे हैं, तो उन्होंने टेबल्स टर्न कर दी थी, इतने ज्यादा मुखालिफ थे इसके।